Om Shanti. 31st December 2007. अभी यह विशेष ध्यान में रखना है कि मुझे ज्ञान से वाचा से तो सेवा करते ही रहते हो और करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन अभी मनसा और कर्म, मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ, सकाश फैलाओ। वाइब्रेशन व सकाश दूर बैठे भी पहुंचा सकते हो शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व सकाश दे सकते हो। तो अभी मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन, शक्तियों द्वारा सकाश और कर्म द्वारा गुणों का सहयोग व अज्ञानी आत्माओं को गुणदान दो। 31st December 2007। अभी यह विशेष ध्यान में रखना है कि मुझे ज्ञान से वाचा से तो सेवा करते ही रहते हो और करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन अभी मनसा और कर्म, मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ, सकाश फैलाओ। वाइब्रेशन व सकाश दूर बैठे भी पहुंचा सकते हो शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व सकाश दे सकते हो। तो अभी मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन, शक्तियों द्वारा सकाश और कर्म द्वारा गुणों का सहयोग व अज्ञानी आत्माओं को गुण दान दो। व्यक्त मुरली 31st December 2007 की है। तो क्या सुना, क्या करना है? वाचा सेवा तो करते ही रहना है, परंतु साथ साथ मनसा और कर्म, मनसा द्वारा क्या करना है? वाइब्रेशंस फैलाओ, सकाश फैलाओ। वाइब्रेशन व सकाश दूर बैठे भी पहुंचा सकते हो। कैसे पहुंचा सकते हो? शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा, किसी भी आत्मा को। तो अभी मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन, शक्तियों द्वारा सकाश और कर्म से क्या करना है? गुण, गुणों का सहयोग ब्राह्मण आत्माओं को और अज्ञानी आत्माओं को गुणदान दो। तो एक है मनसा की सेवा, दूसरी है वाचा की, तीसरी है कर्मणा की। मनसा द्वारा शक्तियां, वाचा द्वारा ज्ञान और कर्मणा गुण, ये फैलाना है। मनसा से शक्तियां फैलाना, कैसे फैलाएंगे? कौन सा मन शक्ति फैला सकता है? कौन सा मन जो है वो शक्तियों को विकीर्ण, रेडिएट कर सकता है? जो मन स्वयं ही शक्तिशाली है, पावरफुल है, स्वच्छ है, व्यर्थ से मुक्त है, स्टेबल है, बहुत सारी बातें। तो मन को शक्तिशाली बनाना ताकि यह मन शक्तियां फैला सके। यह जो बात हमने कही है, यह अब तक कई बार चर्चा हो चुकी है, कई बार। अभी हम समाप्ति की ओर है मनसा सेवा की किताब की। तो यहां बाबा ने कहा है कि मनसा से शक्तियां फैलाना है, क्योंकि आत्मा एक ऐसी है, कमजोर है, शक्तिहीन है, हिम्मत नहीं है। इस पैराग्राफ से पहले बाबा ने, जो यहाँ तो प्रिंट नहीं हुई है, परंतु एक बात यहाँ पर आप कही है कि नहीं चाहती, अब क्या करना चाहती है? देखना चाहती है, अनुभव करना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है, सब पता है ज्ञान, परंतु इस ज्ञान मार्ग में चलने के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए पावर चाहिए, धारणाओं को धारण करने के लिए शक्ति चाहिए। वो शक्ति कहां से आएगी? वो नहीं है। ज्ञान सुन लेते हैं, ज्ञान समझ लेते हैं, बौद्धिक तल पर, तार्किक तल पर पता है कि ये सत्य है, परंतु धारणा के लिए पावर चाहिए, वो कहां से आएगी? इसके लिए क्या करना है? अमृत वेले आत्माओं को इमर्ज करके उन्हें शक्तियां देनी है, परंतु उससे पहले हमें अपने साथ कुछ करना होगा। क्या करना होगा? अपने मन को शक्तिशाली, पावरफुल। मन का स्वभाव है कि छोटी छोटी बातों में भटकता है, छोटी छोटी जगह पे ठहर जाता है। जैसे कल शाम को भी रात को भी कह रहे थे, उस असीम को पाना है तो असीम होना होगा, उस बेहद तक पहुंचना है तो बुद्धि को बेहद में ले जाना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों में फंसी हुई बुद्धि, फंसा हुआ मन कभी भी यह सेवा नहीं कर सकता। मनसा सेवाधारियों की बाबा को आवश्यकता है। स्थूल सेवाधारी तो यूं आ जाएंगे, अभी बोलो रोटी में 100 माताएं चाहिए तो तुरंत मुरली विरली सब छोड़कर वहां, परंतु बाबा कहे कि मुझे अगर 100 मनसा सेवाधारी चाहिए अभी अभी, और वो भी ऐसे कि उसे एक घंटे में एक भी व्यर्थ संकल्प ना आए, ऐसे पावरफुल मनसा सेवाधारी, फोकस्ड हो सके, कॉन्सेंट्रेटेड हो सके तुरंत, उनकी आवश्यकता बाबा को अभी ज्यादा है। तो मनसा सेवा के लिए मन भी बेहद में चाहिए, असीम में चाहिए, अनलिमिटेड में चाहिए, छोटी छोटी बातों में नहीं। कल बात हम कर रहे थे एडजस्टमेंट की, एक बात और याद आ रही है कि एक पति से पूछा जाता है कि तुम्हारा कभी झगड़ा नहीं होता है क्या पत्नी के साथ? वो कहता है पिछले 30 साल में आज तक एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। वो कहता है कारण क्या है? कारण, वो कहता है समझौता, बस यही कारण है। जितनी छोटी छोटी बातें हैं उन सब का निर्णय वो कर लेती है, और जो बड़ी बड़ी बातें हैं उनका निर्णय मैं करता हूं। तो व्यक्ति पूछता है छोटी बातें कौन सी और बड़ी बातें कौन सी है, कौन सी होगी? वो कहता है संसार की छोटी छोटी बातें, कौन सी कार खरीदनी है, कहां घर बनाना है, बच्चों को कहां स्कूल में डालना है, घर में कौन कौन से सामान चाहिए, ये सब संसार की छोटी छोटी बातें, इन सब के निर्णय वो करती है। किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, किसको कौन सी गिफ्ट देनी है, क्या करना है, ये सारी जो छोटी 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 संसार की बातें है उसका निर्णय वो जो करेगी वो राइट, और मैं जो करता हूँ वो बड़े निर्णय, जैसे आत्मा परमात्मा है ही नहीं है या नहीं है, मोक्ष क्या है, नरक 3 प्रकार का है, 7 प्रकार का है, इन सब बातों के बारे में जो बड़ी बात है इसका निर्णय मैं करता हूँ। तो कहते हैं कि इसकी वजह से झगड़ा कभी हुआ ही नहीं, ट्रांसफर कर दिया है, जो वो कहेगी वो राइट। असीम, हम तो बात कुछ और कर रहे थे, असीम में रहना, बेहद में रहना, बुद्धि को नीचे नहीं आने देना। बुद्धि की टेंडेंसी, बुद्धि चाहती है कि वो नीचे जाए, छोटी छोटी बातों में रहे और उनका ही चिंतन करते रहे, ऐसा मन कभी शक्तिशाली नहीं हो सकता। उसको ऊपर रखना है, उसके लिए पावरफुल शक्तिशाली विचार संकल्प चाहिए, क्योंकि बुद्धि जो है उसी छोटे से कुएं में, जो कुआ है ना छोटा, उसी में घूमती रहती है, गोल 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 गोल, कुपमंडूप। दिखा है ना, एक हंस जाता रहता है एक समुद्र से दूसरे समुद्र की ओर, थक जाता है बेचारा, तो नीचे देखता है कुआ है और उस कुएं के पाट पर जाकर रुकता है, तो नीचे कुएं में एक मेंढक होता है। तो मेंढक जब उस हंस को देखता है तो उससे पूछता है, तुम कौन हो? वो कहता है, मैं एक हंस हूँ, एक समुद्र से दूसरे समुद्र की ओर जा रहा है। तो मेंढक पूछता है, ये समुद्र क्या है? वो कहता है, समुद्र बहुत बड़ा जहां पर जल होता है, ऐसा स्रोत पानी का, वह जल वह समुद्र है। तो वह मेंढक पूछता है, क्या वह समुद्र इतना बड़ा होता है जहां मैं रहता हूं? वो कहता है, नहीं मेंढक भाई, ऐसा नहीं है, समुद्र तो बहुत बड़ा होता है। वो मेंढक फिर छलांग लगाता है यहां से वहां तक। अब कहता है कि बताओ इतना बड़ा होता है? वो कहता है, नहीं इतना नहीं, इससे कई गुना बड़ा होता है। फिर वो थोड़ी बड़ी छलांग लगाता है और फिर पूछता है, इतना बड़ा होता है समंदर? वो कहता है, नहीं इससे कई गुना बड़ा होता है। फिर थोड़ा सा मेंढक को गुस्सा भी आता है और वो पूरा जितना वो कुआ है उसका गोल एक चक्कर लगाते हैं। अब कहता है, अब तो उसे नकारात्मक उत्तर की अपेक्षा न थी और पूछता है कि इतना बड़ा है क्या, इससे तो बड़ा हो ही नहीं सकता। वो हंस कहता है कि नहीं, समुंदर है वो, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम कभी गए ही नहीं हो। हम भी अपनी बुद्धि के ही कुएं में छलांग लगाते रहते हैं, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। उस असीम की झलक कैसे प्राप्त हो सकेगी? उस बेहद को पाने के लिए, उस बेहद का अनुभव करने के लिए, उस अनलिमिटेड का अनुभव करने के लिए बुद्धि को भी अनलिमिटेड में लेके जाना पड़ेगा। और अनलिमिटेड में लेके जाने का माध्यम है उसके महावाक्य, भगवान के महावाक्य, उनका अध्ययन, उन्हीं में रमन करना, उन्हीं में चित्त को लगाए रखना। क्योंकि वो जो कह रहा है, उस दिन भी कहा था, उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत ऊंचा है, स्पीकर इधर है उसका प्लेटफॉर्म और सुनने वाले नीचे है, कैसे समझ पाएंगे? बुद्धि के तल से तो समझ लेंगे, शब्दों का अर्थ शब्दकोश में मिल जाएगा, परंतु कौन से भाव उनमें छिपे हुए हैं, कौन सा अनुभव उन शब्दों से वो कराता है, वो नहीं समझा जा सकता। जब तक उसकी जो स्थिति है उसी स्थिति में हम स्थित नहीं हो जाते। स्पीकर जहां है वही ऑडियंस का तल हो चेतना का, वह व्यक्त है तो उसी अव्यक्त स्थिति में ही उसे सुना जा सकता है। अगर नहीं सुनेंगे तो वो वैसा नहीं समझ में आएगा, उसमें समझने में बदल होगा। इसलिए क्या करना है, शक्तिशाली बनने के लिए शक्तिशाली महावाक्यों का अध्ययन, शक्तिशाली बनने के लिए शक्तिशाली चिंतन। वहां टेलीफोन एक्सचेंज के पास मंजुबेन वो जो लिखा हुआ है वरदानों, क्या लिखा है, वरदान, वरदानों की शक्ति, एक एक वाक्य महावाक्य सब में पढ़े हैं। वो सुशील भाई सभी को एक पेपर पे लाके दीजिए उसकी प्रिंट आउट। वो जो वरदानों की शक्ति है बाबा के चुनिंदा मुरलियों से निकाले हुए एक एक महावाक्य भी इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, सब मुरलियों से लिए हुए वो वाक्य है। ऐसे शक्तिशाली महावाक्यों का संग्रह हमारे पास चाहिए। क्योंकि नहीं तो माइंड जैसे कहा वो नीचे सरक जाता है, छोटी छोटी बातों में, यहां की बातों में, संसार की बातों में, यही उसे अच्छा लगता है, फिर वो अंदर नहीं जाना चाहता। बहुत सारी चीजें उसमें कुछ बातें हैं और कुछ और भी है। जैसे साक्षीपन का तो एक वाक्य है उसमें, जैसे बाप इस ड्रामा को साक्षी होकर देखता है तुम भी साक्षी होकर देखो, बाप को यूज करो। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, यहां पर किसी का कोई दोष नहीं। यह साक्षी स्थिति बहुत ही मीठी स्थिति है। साक्षी स्थिति बहुत ही मीठी स्थिति है, कहीं पर हम इंटरफियर नहीं कर रहे, कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, साक्षी है। उस दिन कहा था ना महाभारत के 8 पात्र, उसमें से कौन सा पात्र साक्षी है? श्री कृष्ण का। बाकी सभी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, संपूर्ण साक्षी है। ऐसा भी नहीं कि वो व्यास की तरह भी नहीं है कि एंजॉय नहीं कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, परंतु फिर भी साक्षी है। यह साक्षी की स्थिति, साक्षी की साधना, साक्षी का भाव लाना। तो हम बात कर रहे थे शक्तिशाली मन की। तो शक्तिशाली मन के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले मन को ऊपर बेहद में रखना, उसको नीचे नहीं आना देना, असीम में रखना, अर्थात इन बेहद महावाक्यों का अध्ययन करते रहना। तो सबसे पहला है शक्तिशाली महावाक्यों का अध्ययन। अभी बाबा जो आ रहे हैं, मुरली उसमें नहीं चल रही है, परंतु हम देखेंगे एक एक टॉपिक उसमें जरूर है, एक ही टॉपिक और उसका इतना विस्तार। एक माला शब्द कितनी बार कहा नागेश भाई? 111 बार। एक ही माला शब्द पिछली मुरली में 111 बार, बार 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 बार। एक रीति से हम देखेंगे तो रिपीटेशन हो रहा है, परंतु वो कहां से आ रहा है? वो जो लेवल है स्पीकर का बहुत ऊंचा है, इसके लिए उसको समझने के लिए हमारी स्थिति भी ऐसी ऊंची चाहिए, मन भी इतना शक्तिशाली चाहिए। इसके लिए मन को शक्तिशाली बनाना, एम्पावरिंग द माइंड। यहां बाबा दूसरे मन को शक्तिशाली बनाने की बात करें, दूसरों के मन को, एनर्जी ट्रांसफरेंस, एनर्जी ट्रांसफरेंस, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, सब ब्रांच ऑफ टेलीपैथी। टेलीपैथी में एक काम यह भी किया जाता है कि एक आत्मा की शक्ति दूसरी आत्मा को ट्रांसफर की जाए, ये कार्य हमें करना है। इसके लिए स्वयं का माइंड इतना शक्तिशाली चाहिए, फोकस्ड चाहिए, उस पर हमने काम किया हो, छोटी छोटी बातों में अटका हुआ नहीं चाहिए। कल कहा था कोई भी दाग ना हो, छोटे मोटे अपमान का और अभिमान का, क्योंकि अपमान का दाग यदि है तो क्या कर देता है? महाभारत को खड़ा करता है। एक स्त्री का अपमान भूला नहीं गया, स्त्री ने अपमानित किया ना, भूल नहीं पाया वो दुर्योधन, तो महाभारत खड़ा हो गया पूरा के पूरा। अपमान का दाग कब बाहर आ जाए पता नहीं चलता है, अभिमान और अपमान। तो मन पास्ट से मुक्त हो, नो पास्ट, देयर इज नो पास्ट। अतीत जो है वो अंधकार है, अब बार बार मन को उधर नहीं लेके जाना है। हुआ जो भी हुआ, ड्रामानुसार हुआ, फुल स्टॉप। उसी के बारे में सोचते रहना, उसी के बारे में वर्णन करते रहना, लोगों को बताते रहना। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई बीमारी, हमें बीमारी आई थी चली गई, अब तक भी जो भी मिलता है उसको उसी की चर्चा चालू रहती है, हमें ये बीमारी थी, ऐसा ऐसा हुआ था, या अभी जो बीमारी है। बीमारी से मुक्त होने की एक विधि जो है वो है डू नॉट टॉक अबाउट योर इलनेस, अपनी बीमारी के बारे में वर्णन करना, लिखना, चिंतन करना, लोगों को बताना, प्रिटेंड दैट यू आर हेल्दी, ये दिखाना कि मैं स्वस्थ हूं, चाहे कुछ भी हो। तो ये एक विधि है, मेंटल हीलिंग की विधि। मेंटल हीलिंग कैसे की जाती है? मेंटल हीलिंग का फर्स्ट प्रिंसिपल ही है डू नॉट टॉक अबाउट योर इलनेस। जितनी मेंटल हीलिंग पर किताबें बनी हुई है, ये प्रथम नियम है कि उसका वर्णन नहीं करो, क्योंकि जैसे ही हम बोलते हैं आई एम नॉट वेल, हम एक आदेश दे रहे हैं बॉडी को, लिख रहे हैं जैसे कि मैं आज ठीक नहीं हूं। मन को हम शरीर को आदेश दिया जा रहा है, मन आदेश देता है शरीर को और शरीर उसे तुरंत स्वीकार करता है। बहुत ही ओबीडियंट सर्वेंट है शरीर, एक आज्ञाकारी सेवक है, जो उसे कहा गया वो मानता है। वो अमृत वेले उठते ही उसे कहो आज थकान सी लग रही है, कमरे में बैठ के करेंगे, वहां जाने की क्या जरूरत है, तो शरीर कहेगा जी हुजूर राइट है सही है। और नहीं भी होगी थकान तो आ जाएगी, उठते ही हाथ लगाया इधर और लगा थोड़ा सा बुखार जैसे लग रहा है, नहीं है परंतु थोड़ी देर में आ जाएगा। ऑल डिसीजेस आर इनवाइटेड गेस्ट्स, तुम्हारी बीमारी तुमने लाई है, बीमारी खुद नहीं आई है, तुमने आह्वान किया है, तुम्हारे निमंत्रण पर वो आई है, सादर निमंत्रण, वार्म एंड कॉर्डियल इनविटेशन के बिना कोई बीमारी आती नहीं है, तुमने भेजा है कहीं ना कहीं अवचेतन में, सबकॉन्शियस माइंड में, मन में था कितने लोग बीमार पड़ते और कितनी छुट्टियां भी लेते हैं, हम जो है 25 साल से एक बार भी बीमार नहीं और एक छुट्टी नहीं, बस इतना कहा और छोड़ दिया। अब यही संकल्प अपना काम करना चालू कर देगा अंदर ही अंदर और परिस्थिति और घटनाओं को निर्माण करेगा। हर बीमारी हमारे निमंत्रण से आई है, इसलिए मन को निगेटिविटी से मुक्त करो। बाबा कह रहे मन को व्यर्थ से मुक्त करो, मन को दाग धब्बे पुराने संस्कार क्या कुछ नहीं है, सब है, वो सब उस पे इंप्रेशन डालते रहते हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, और अनकॉन्शियस अंदर ही अंदर हमें भी नहीं पता वो प्रोसेस चालू है, कुकिंग अंदर ही अंदर हम इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं बर्तन में, वो आग पे रखा हुआ है, क्या बन रहा है पता ही नहीं चल रहा है, कौन सा व्यंजन तैयार हो रहा है, और जब वो बाहर आता है तब पता चलता है, पर बनाया किसने, इतने सालों में हमने ही बनाया है। टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल योर डिसीजेस, सेकेंड स्टेप, अपनी सारी बीमारियों के लिए स्वयं को जिम्मेवार समझना, ना कोई व्यक्ति। उस बीमारी से यदि मुक्त होना है तो मैं और मैं और मैं उसके लिए जिम्मेवार हूं, मेरे ही संकल्पों से आमंत्रित यह बीमारी है, इसके लिए मन को शक्तिशाली बनाना है। तो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं जिन बातों ने मन को कमजोर किया है, शरीर को भी कमजोर कर दिया, और कमजोर शरीर में शक्तिशाली मन नहीं रह सकता। उस दिन पवित्रा बहन ने कहा ना कि फिटनेस का चिंतन करना ये बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है, शरीर को फिट रखना, क्योंकि ये शरीर साधन है, इसी में बैठ के परमात्मा तक यात्रा करनी है, इसी में बैठकर ये आध्यात्मिक ये ब्राह्मण जीवन का मजा लिया जा सकता है। शरीर यदि बीमार है तो मजा आएगा ब्राह्मण जीवन का, नहीं आ सकता है। विदेश में एक संत हुआ है कभी, सेंट फ्रांसिस डी सेल्स, उसने बहुत उपवास किए, बहुत क्या क्या किया, बहुत साधनाएं की, सुखा दिया था शरीर को, और फिर लास्ट में मृत्यु के समय उसने एक वार्तालाप है उसका, कन्वर्सेशन ऑफ सेंट फ्रांसिस डी सेल विद हिज बॉडी, वो अपने शरीर से बात कर रहा है कि हे मेरे शरीर तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मैं भगवान को पा सका, भगवान का अनुभव कर सका इस जीवन में, परंतु मुझे माफ भी कर देना क्योंकि मैंने तुम्हारे तरफ कई बार ध्यान नहीं दिया, परंतु वो बार बार धन्यवाद कर रहे हैं अपने शरीर को, शरीर का जो कि स्थूल है। तो शक्तिशाली मन के लिए शक्तिशाली देह भी चाहिए। शक्तिशाली अर्थात वो वाला नहीं, वो बॉडी बिल्डर वाला नहीं, स्वस्थ स्वस्थ हेल्दी, जिसकी निद्रा जिसका भोजन संयमित है, ऐसा देह जिसको हमने थोड़ा तपाया भी है, भोग विलासिता में डूबा हुआ नहीं है, स्वाद लोलुपता वहां नहीं है, शक्तिशाली है, संयम है, मॉडरेशन, ऐसा जो देह है वहीं पर एक शक्तिशाली आत्मा रह सकती है। तो शक्तिशाली बनने के लिए देह भी कैसा चाहिए? शक्तिशाली और स्वस्थ चाहिए। पास्ट में नहीं वर्तमान में जीना, ये भी शक्तिशाली मन की निशानी है। व्यर्थ नहीं समर्थ, भविष्य भी नहीं और डे ड्रीमिंग भी नहीं, दिवा स्वप्न भी नहीं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, उन चिंताओं से फारिक। कल कहा था ना वरदान में, क्या कहा था, हम कौन है? परमात्मा प्यारे, हम परमात्मा प्यारे हैं, फिकर से फारिक, ऐसी आत्मा है। तो टेंशन, एंग्जाइटी, वरीज, ये सारी शरीर को भी और मन को भी कमजोर करता है। तो हमें शक्तिशाली बनना है और आत्माओं को शक्तिशाली बनाना है, वो हर संभव प्रयास करना है जिससे मन शक्तिशाली बने। हर एक प्रयत्न जितना हम कर सकते हैं, जितना ढूंढ सकते हैं मेथड्स, क्या क्या करें शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और माइंड को स्वस्थ रखने के लिए, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, दोनों को ही शक्तिशाली बनाने के लिए क्या क्या करें, किससे मदद लेनी है तो मदद लो, कोई भी हो सकते हैं, डॉक्टर से लेकर तो, साइकोलॉजिस्ट से लेकर तो, साइकेट्रिस्ट से लेकर तो, काउंसिलर से लेकर, कोई भी स्पिरिचुअल काउंसिलर से लेकर, स्वयं को देखते रहना। कल कहा था ना, व्यक्ति सब जगह टिकट को ढूंढ रहा था, एक ही जगह नहीं ढूंढता है, बस कहां पर, उसकी जेब में, सब जगह ढूंढता है क्योंकि डर है, नहीं मिला तो। परंतु वही है, और कोई मार्ग नहीं है, अंदर टर्न करना स्वयं को, जो बाहर की दौड़ है उसको रोकना। तो क्या कह रहे हैं बाबा यहां पर, सकाश दो, वाइब्रेशन फैलाओ, मुख से ज्ञान देना बंद नहीं करना है, ज्ञान देते रहना है, मुख से ज्ञान देना रोकना नहीं है। इस यात्रा में चलते चलते ये काम कम हो जाता है, बाहर रहने वाले और यहां रहने वाले, इसके लिए हर दिन ज्ञान देते रहना है, चाहे वो 7 डे कोर्स हो, चाहे ज्ञान का डिस्कशन हो, वर्कशॉप हो, सेमिनार हो, कुछ भी हो, ज्ञान निकलते रहना चाहिए। और ज्ञान की चर्चा के लिए 2 लोग काफी है, बहुत बड़े संगठन की जरूरत नहीं है, केवल 2 लोग, सिंसियर सीकर्स, परंतु ऐसे हो कि वो जो ज्ञान की हम चर्चा करें उससे कुछ निकले कंक्लूजन, वो करने के बाद हमें महसूस हो कि हम शक्तिशाली बने। तो डेली ज्ञान डिस्कशन बहुत जरूरी है, ज्ञान भट्टी, ज्ञान की भट्टी। हर आत्मा के पास बहुत सारे गहरे गहरे अनुभव है, जो भी ब्राह्मण बनी है, ब्राह्मण बनने के बाद के और ब्राह्मण बनने के पहले, दोनों प्रकार के अनुभव है। इसलिए आत्माओं के साथ बैठकर चर्चा करना, डिस्कस करना। कुछ दिन पहले एक विदेश की बहन है, 30-40 साल से भी अधिक समय से ज्ञान में है, उसने हमसे एक प्रश्न पूछा कि तुम कौन हो, और कहा कि मुझे ये मत बताना जो मैं जानती हूं। क्या उत्तर देंगे? हु आर यू? पवित्रा बहन, नहीं वो नहीं, वो सारे उत्तर नहीं बताओ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मन बुद्धि संस्कार सहित हूँ। इसके पहले भी इसी बहन ने यही प्रश्न पूछा था 2 साल पहले या 3 साल उसकी खोज में हूँ। और अगर कोई कोई बाहर वाला नहीं पूछ रहा है, अज्ञानी पुराना पूछ रहा है कि तुम कौन हो, हु आर यू, वो नाम नहीं, वो प्रोफेशन नहीं, वो सब नहीं, कौन हो, वर्तमान समय भी नहीं, कौन हो, कौन हो, क्या हो, क्या साक्षात क्या उत्तर दें वो इधर उधर से प्रश्न पूछे पर प्रश्न वहीं पर आया, तुम कौन वो बताओ, मुझसे मत पूछो, मैं क्या जानती हूँ वो नहीं चाहिए मुझे, वो नहीं चाहिए, या दूसरे क्या समझते हैं तुम ये हो वो भी नहीं, हु आर यू। श्याम भाई कौन हो हमने दिया कुछ जवाब, देवेंद्र भाई क्या उत्तर है, आप कौन हो अगर कोई पूछे आपसे, क्या उत्तर देंगे, कौन सी सेवा करते हैं वो नहीं, शरीर का नाम क्या है वो नहीं, कहां से आए हो वो नहीं। अज्ञानियों को जो हम कोर्स पढ़ाते 7 डेज का कोर्स में जो बताया था वो नहीं, तो एनर्जी हो तो वो तो उसने कहा कि जो मुझे पता है वो मत बताना उनका चिंतन अलग प्रकार का होता है, विदेशियों का बहुत गहरा चिंतन होता है हर चीज के बारे में, हर चीज के बारे में, जिस तरह से हम चीजों को चीजों का चिंतन करते, क्योंकि उसका एक मुख्य कारण है उनके वहां भाषा परिवर्तन होती है, क्योंकि हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं और वही शब्द हमारी बुद्धि में, जैसे मन वचन कर्म से करना है हो गया, उसका कोई चिंतन ही नहीं चलता है, तन मन धन बाप को दे दो हो गया खत्म एक लाइन में, वो इतनी बार सुना इतना रिपीट हुआ है कि उसका चिंतन होना ही कम, पर वहां उनके यहाँ भाषा बदलती है, वो उस भाषा में अलग भाषा में चिंतन करते हैं, भले बहुत सारे भाव परिवर्तन हो जाते हैं इस मुख्य से मेन जो है उससे, परंतु उनका चिंतन फिर उनका बचपन का जो भाषा है और जो लिटरेचर है उससे साथ जुड़ता है, वो उस अनुभव के साथ, और चिंतन एक नई दिशा ले लेता है, इसके लिए कुछ नई नई बातें वहां से निकल कर आ जाती है जो हमने कभी सोची भी नहीं थी भारत वालों ने। तो फिर भी उत्तर क्या है, कौन हो तुम क्या उत्तर देंगे यही उत्तर है, फुल स्टॉप हम थोड़ी देर चुप हो गए, परंतु हमने एक उत्तर उसको दिया, पता नहीं कितना वो सही है, हमने उनको कहा कि आई एम अ पिलग्रिम ऑन द पाथ ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस, चेतना की जो परम अवस्था है उस परम अवस्था तक पहुंचने की जो डगर है उसका एक राही, पिलग्रिम ऑन द पाथ ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस, आत्मा चेतना है और वो चेतना कम तल से ऊपरी तल पर निचली दर्जे से ऊपरी दर्जे तक पहुंच रही है, तो ये पूरी यात्रा आत्मा की है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, द्वापर से चालू हुई ये यात्रा, जैसे कि चेतना बहुत ऊंचे तल पर थी पर नीचे उतरी, अब फिर से उसने यात्रा चालू की है, ऐसा जो राही है वह जो डगर है चेतना की, राह जो है उस या राह का उस पथ का पथिक। तो उत्तर कई सारे हो सकते हैं, ये तो उत्तर एक हमने उनको दिया था, तो इस तरह से स्वयं की खोज ये अध्यात्म है, ये केवल इंफॉर्मेशन है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा परम धाम में है, वो उसके वो अभी आया हुआ है ब्रह्मात्म, ये सब इंफॉर्मेशन है, एक है ज्ञान, एक है इंफॉर्मेशन सूचना, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है विजडम विवेक, सूचनाओं से ज्ञान तक पहुंचना है, ज्ञान से विज्ञान कहो विजडम कहो विवेक तक, ये यात्रा है चेतना की। ओम शांति।